डैनियल की पुस्तक संख्या 72 भविष्योक्त मिलन। प्राचीन इसराइल के विभाजन से संयुक्त राज्य अमेरिका के अंत तक
यारोबाम के विद्रोह की गवाही प्राचीन इसराइल के दो राष्ट्रों में विभाजन का इतिहास भी है। 10 गोत्रों से बना उत्तरी राज्य इसराइल कहलाता था और कभी कभी एप्रैम भी, और दक्षिणी राज्य यहूदा कहलाता था। यहेजकेल के समय में वो राज्य कई वर्षों से दो राज्यों में बटा हुआ था, और अध्याय 37 में यहेजकेल को एक भविष्यवाणी दी गई कि वे दोनों राज्य फिर से एक राष्ट्र बन जाएंगे। वो भविष्यवाणी पृथ्वी के पशु संयुक्त राज्य के प्रारंभिक इतिहास में पूरी हुई और संयुक्त राज्य के अंत में अंतिम बार पूरी होती है, क्योंकि यीशु हमेशा किसी बात के अंत को उसके आरंभ से चित्रित करते हैं। जब इसराइल दो में विभाजित हुआ था, उस समय यारोबाम का विद्रोह संयुक्त राज्य अमेरिका की शुरुआत में होने वाले विद्रोह का और उसके अंत में होने वाले विद्रोह का प्रतीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की शुरुआत और अंत में होने वाले इस विद्रोह में दो राज्यों का एक होना शामिल है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 18, जैसा कि इन लेखों में सिस्टर व्हाइट की रचनाओं से बार बार उद्धृत किया गया है, कलीसियाओं के लिए दो आह्वानों का प्रतीक है। रविवार कानून के संकट की घड़ी में जो दो राष्ट्र एक होते हैं, वे हैं 144,000 और परमेश्वर की अन्य भेड़ें जो अब भी बाबुल में है।
मिलराइट इतिहास में जो दो राष्ट्र एक किए गए थे, वे यहूदा और इफ्रैम थे। वे तब एक किए गए जब दोनों राज्यों के विरुद्ध अलग अलग कोप क्रमशः 21वीं महाअलातीत 1798 में और फिर एशतेंग तक समाप्त हुए। यहेजकेल अध्याय 37 में मोरओवर शब्द हमें इस अनुप्रयोग के विषय में सुनिश्चित होने देता है। मोरओवर शब्द का अर्थ है मोरओवर के बाद आने वाले संदेश को उस संदेश के ऊपर रखना जो मोरओवर शब्द से पहले था।
यहोवा का वचन मेरे पास फिर से आया ये कहते हुए, हे मनुष्य के पुत्र, तू एक छड़ी ले और उस पर लिख यहूदा के लिए और उसके साथी इसराइलियों के लिए, फिर दूसरी छड़ी ले और उस पर लिख यूसुफ के लिए, एप्रैम की छड़ी और उसके साथियों अर्थात सारे इसराइल के घराने के लिए, और उन्हें एक दूसरे से जोड़कर एक ही छड़ी बना और वे तेरे हाथ में एक हो जाएंगी। यहेजकेल 37:15-17।
यहेजकेल जब इसके आसरिक्त कहता है, तब वो दोहराने और विस्तार करने के भविष्य सूचक सिद्धांत को लागू कर रहा है। यहेजकेल को दो लकड़ियां लेनी है, एक यहूदा के लिए और एक एप्रैम के लिए, और दो लकड़ियों को द्वारा दर्शाई गई उस भविष्यवाणी को लेकर अतिनो उसे पिछली भविष्यवाणी के ऊपर रखना है। पिछला भविष्य सूचक चित्रण पहली आयत में तब शुरू हुआ जब यहेजकेल को मृत सूखी हड्डियों की एक घाटी में ले जाया गया था।
प्रभु का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे प्रभु की आत्मा में बाहर ले जाकर उस घाटी के बीच में बैठा दिया जो हड्डियों से भरी थी, और उसने मुझे उनके चारों ओर से होकर गुजारा, और देखो घाटी की सतह पर बहुत सी हड्डियां थी और देखो वे अत्यंत सूखी थीं, और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य पुत्र, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं? मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु परमेश्वर, तू ही जानता है। फिर उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों पर भविष्यवाणी कर और उनसे कह, हे सूखी हड्डियों, प्रभु का वचन सुनो। प्रभु परमेश्वर इन हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारे भीतर श्वास प्रवेश कराऊंगा और तुम जीवित हो जाओगे, और मैं तुम पर स्नायु लगा दूंगा और तुम पर मांस चढ़ाऊंगा और तुम्हें चमड़ी से ढक दूंगा और तुम में श्वास डाल दूंगा और तुम जीवित हो जाओगे और तुम जानोगे कि मैं ही प्रभु हूं। तब मैंने जैसा मुझे आज्ञा दी गई थी वैसा ही भविष्यद्वाणी की, और जब मैं भविष्यद्वाणी कर रहा था तो एक शब्द हुआ और देखो एक हलचल हुई और हड्डियां आपस में मिल गईं, हड्डी अपनी हड्डी से जुड़ गई, और मैंने देखा कि उन पर स्नायु और मांस चढ़ आया और ऊपर से चमड़ी ने उन्हें ढक लिया, पर उनमें श्वास न थी। तब उसने मुझसे कहा, वायु से भविष्यद्वाणी कर, भविष्यद्वाणी कर हे मनुष्य पुत्र, और वायु से कह, प्रभु परमेश्वर यूं कहता है, हे श्वास चारों पवनों से आ और इन मारे हुओं में श्वास भर ताकि ये जीवित हो जाएं। तब मैंने जैसा उसने मुझे आज्ञा दी थी वैसा ही भविष्यद्वाणी की, और श्वास उनमें आ गई और वे जीवित हो उठे और अपने पैरों पर खड़े हो गए, एक अत्यंत बड़ी सेना। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य पुत्र, ये हड्डियां इसराइलियों के सारे घराने की है। देखो, वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई हैं और हमारी आशा नष्ट हो गई है, हम पूरी तरह से कट गए हैं। इसलिए भविष्यद्वाणी कर और उनसे कह, प्रभु परमेश्वर यूं कहता है, देखो हे मेरी प्रजा, मैं तुम्हारी कब्रें खोलूंगा और तुम्हें तुम्हारी कब्रों में से निकाल लाऊंगा और तुम्हें इसराइल के देश में ले जाऊंगा। और जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूंगा, हे मेरी प्रजा, और तुम्हें तुम्हारी कब्रों में से निकाल लाऊंगा, तब तुम जानोगे कि मैं ही प्रभु हूं, और मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगे, और मैं तुम्हें तुम्हारे अपने देश में बसाऊंगा। तब तुम जानोगे कि मैंने ये कहा है और इसे पूरा किया है। प्रभु की वाणी। येजकेल 47:47, 10:14।
इन लेखों की शुरुआत से ही हमने दिखाया है कि मृत हड्डियों की घाटी अंतिम दिनों में परमेश्वर के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, और कि चारों पवनों का संदेश, जो उन्हें एक शक्तिशाली सेना के समान अपने पैरों पर खड़ा कर देता है, वही आधी रात की पुकार का संध, जो इस्लाम को तीसरी हाय के रूप में पहचानता है। सिस्टर व्हाइट हड्डियों को परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर के लिए गहरेतर रूप में पहचानती है।
मैं अपनी कलम रख देता हूँ और प्रार्थना में अपनी आत्मा को ऊपर उठाता हूँ कि प्रभु अपने धर्म से पीछे हटे हुए लोगों पर, जो सूखी हड्डियों के समान है, अपनी श्वास फूंक दे ताकि वे जीवित हो जाएं। जनरल कॉन्फ्रेंस बुलेटिन 4 फरवरी 1893।
हमने पहले के लेखों में दिखाया है कि 18 जुलाई 2020 को चिन्हित करने वाला भविष्य सूचक संदेश त्रुटिपूर्वक और था, और उस झूठी घोषणा ने 10 कुमारियों के दृष्टांत में पहली निराशा और विलंब को चिन्हित किया। यद्यपि मिलराइट काल में समय की घोषणा वैध थी, 1844 के बाद समय निर्धारण पर आधारित कोई और संदेश कभी नहीं होना था। जब फ्यूचर फॉर अमेरिका ने 18 जुलाई 2020 की घोषणा की, तो वे उस इतिहास में लौट गए जिसमें समय की घोषणा स्वीकार्य थी, और ऐसा करते हुए उन्होंने पाप किया, और वे प्रकाशित वाक्य बरका अध्याय 11 के महान नगर की सड़क पर मार डाले गए। सड़क पर मृत पड़े तब उन्हें पुनर्जीवित किया जाना था, जैसे 3.5 दिनों के बाद 2 साक्षियों को किया गया था।
सूखी हड्डियों पर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का श्वास फूका जाना आवश्यक है ताकि वे मरे हुओं में से पुनरुत्थान के समान क्रियाशील हो उठें। बाइबल ट्रेनिंग स्कूल, 1 दिसंबर 1903।
पिछले लेखों में हमने दिखाया है कि चार पवनों का वो संदेश, जो 2 गवाहों को पुनर्जीवित करता है, तीसरे हाय से संबंधित इस्लाम का संदेश है, और ये कि वही संदेश अंतिम दिनों की मध्य रात्रि की पुकार का संदेश है। हेजकेल कहता है, इसके अलावा और ऐसा कहते हुए वो संकेत करता है कि उस इतिहास में, जो मध्य रात्रि की पुकार की घोषणा को दर्शाता है, 2 डंडे, एक इफ्राम का और दूसरा यहूदा का प्रतिनिधित्व करने वाला, आपस में जोड़े जाने थे और एक राष्ट्र बनना था। 10 कुवारियों का दृष्टांत अंतिम दिनों में अक्षरशः उसी प्रकार पूरा होता है जैसा वो मिलराइट इतिहास में पूरा हुआ था। जिस काल में मिलराइट इतिहास में मध्य रात्रि की पुकार पूरी हुई, और फिर अंतिम दिनों की पूर्ति में भी 2 डंडे जुड़े थे और जुड़ेंगे। 2 लकड़ियां प्राचीन इसराइल के उत्तरी राज्य इफ्राइम और दक्षिणी राज्य यहूदा का प्रतिनिधित्व करती थी। हमने ये भी दिखाया है कि विलियम मिलर एलिया के प्रतिरूप थे, और ये कि 3.5 वर्षों के अकाल के दौरान एलिया सारेपत की विधवा के पास गया था।
तब यहोवा का वचन उसके पास आया कि उठ, सिदोन के प्रदेश के सारे पद को जा और वहीं ठहर। देख, मैंने वहां एक विधवा स्त्री को तेरी सेवा करने की आज्ञा दी है। तब वो उठकर सारे पद को गया, और जब वो नगर के फाटक पर पहुंचा, तो देख, एक विधवा स्त्री वहां लकड़ियां बटोर रही थी, और उसने उसे पुकार कर कहा, कृपा करके मुझे पीने के लिए किसी पात्र में थोड़ा पानी ला कि मैं पीऊं। और जब वो उसे लाने जा रही थी, उसने उसे पुकार कर कहा, कृपा करके अपने हाथ में रोटी का एक टुकड़ा भी मेरे लिए ले आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास रोटी की टिकिया नहीं है, केवल एक घड़े में मुट्ठी भर आटा और एक कुप्पी में थोड़ा तेल है, और देख मैं दो लकड़ियां बटोर रही हूं कि जाकर उसे अपने और अपने बेटे के लिए पकाऊं कि हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। तब एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जा जैसा तूने कहा है वैसा ही कर, परंतु पहले उसी से मेरे लिए एक छोटी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इसराइल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, आटे का घड़ा खाली न होगा और तेल की कुप्पी कम न होगी जब तक यहोवा पृथ्वी पर वर्षा न करे। तब वो गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया, और वो एलिय्याह और उसका घराना बहुत दिनों तक खाते रहे। 1 राजाओं 17:12-15।
उस अंश में कई दिन से तात्पर्य उन 3.5 वर्षों से है जिनमें अहाब ने एलिय्याह की तलाश की, और वे पापसी उत्पीड़न के 1260 वर्षों का प्रतीक थे। पापसी उत्पीड़न के कई दिन के बारे में यीशु ने कहा,
और यदि वे दिन घटाए न जाए तो कोई प्राणी बचाया न जाएगा, परंतु चुने हो के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। मत्ती 24:22।
बहन व्हाइट यीशु के वे दिन संबंधी कथन को पोपवादी उत्पीड़न की अवधि के रूप में प्रत्यक्ष रूप से पहचानती है।
कलीसिया पर होने वाला उत्पीड़न पूरे 660 वर्षों की अवधि के दौरान लगातार नहीं चला। परमेश्वर ने अपने लोगों पर दया करते हुए उनकी अग्नि परीक्षा के समय को संक्षिप्त कर दिया। कलीसिया पर आने वाले महाक्लेश की पहले से भविष्यवाणी करते हुए उद्धारकर्ता ने कहा, यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। मत्ती 24:54। धर्म सुधार के प्रभाव से उते 98 से पहले ही उस उत्पीड़न का अंत हो गया। महान विवाद 166 और 166।
वे कई दिन जिनमें एलिय्याह का निर्वाह विधवा द्वारा किया गया था, वही दानियल द्वारा निर्दिष्ट पापाई उत्पीड़न के कई दिन भी थे।
और जो लोगों में समझ रखने वाले होंगे वे बहुतों को शिक्षा देंगे, तो भी वे तलवार, ज्वाला, बंदूहाई और लूट के द्वारा बहुत दिनों तक गिरेंगे। अब जब वे गिरेंगे तब उन्हें थोड़ी सहायता मिलेगी, परंतु बहुत से लोग चाटुकारिता से उनसे आ मिलेंगे, और उनमें से कुछ समझ रखने वाले भी गिरेंगे ताकि उन्हें परखा जाए, शुद्ध किया जाए और उजले किए जाए, यहां तक कि अंत समय तक, क्योंकि ये अभी भी नियत समय तक के लिए है। दानियल 11:5-17।
अंत का समय, जो पदों में नियत समय भी है, असंतहनाइती था, और इसने पापाई उत्पीड़न के अंत को चिह्नित किया, जैसा कि सारेपत की विधवा के साथ एलिय्याह के समय द्वारा पूर्व रूप में दर्शाया गया था। उस इतिहास में अविवाहित कलीसिया का प्रतिनिधित्व करने वाली उस विधवा की पहचान प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 12वें अध्याय में जंगल में रहने वाली कलीसिया के रूप में की गई थी। वो दो लकड़ियां बटोर रही थी, एक लकड़ी नहीं और न ही 10 लकड़ियां, बल्कि 2 लकड़ियां। यहेजकेल को 2 लकड़ियां लेनी थीं, एक इसराइल के उत्तरी राज्य के लिए और एक इसराइल के दक्षिणी राज्य के लिए, और उन्हें जोड़कर एक लकड़ी बनानी थी। वे दोनों राज्य 2520 वर्षों तक तितर बितर रहे थे, परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञा ये थी कि वो उन्हें इकट्ठा करेगा। वो स्त्री उन 2 लकड़ियों को बटोर रही थी जिन्हें आपस में जोड़ा जाना था, और वो ऐसा जब तक वो दिन न आ जाए कि प्रभु पृथ्वी पर वर्षा भेजे तब तक कर रही थी।
जिस दिन प्रभु ने वर्षा भेजी, वही दिन मिलराइट इतिहास की मध्यरात्रि की पुकार की पहचान कराता था, जो 22 अक्टूबर 1844 को अपने समापन पर पहुंची, जब वाचा का दूत अचानक उस मंदिर में आया जिसका निर्माण उसने 1798 पहले कोप का अंत से लेकर 22 अक्टूबर 1844 अंतिम कोप का अंत तक किया था। उसी अवधि में हेजकेस के हड्डियों की घाटी के चित्रण में प्रस्तुत मध्यरात्रि की पुकार का संदेश पूरा हुआ, जब उत्तरी और दक्षिणी राज्यों की 2 छड़ें एक राजा के साथ एक राष्ट्र बनाने हेतु जोड़ दी गईं, क्योंकि 22 अक्टूबर 1844 को मसीही पिता के सामने आए और एक राज्य प्राप्त किया।
हमारे महायाजक के रूप में पवित्र स्थान के शुद्धिकरण के लिए मसीह का परम पवित्र स्थान में आना, जिसका दर्शन दानियल 8:14 में कराया गया है, मनुष्य के पुत्र का अति प्राचीन के पास आना, जैसा कि दानियल 7 तर्क में प्रस्तुत किया गया है, और प्रभु का अपने मंदिर में आना, जिसकी भविष्यवाणी मलाकी ने की थी, ये सब एक ही घटना के वर्णन हैं और इसी का निरूपण उस दूल्हे के विवाह में आने के द्वारा भी किया गया है, जिसका वर्णन मसीह ने मत्ती 25 की 10 कुवारियों के दृष्टांत में किया है। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 426।
मसीह ने 22 अक्टूबर 1844 को एक राज्य प्राप्त किया, जैसा कि दानियल में वर्णित है।
मैंने रात के दर्शन में देखा और देखो, मनुष्य के पुत्र के समान एक आकाश के बादलों के साथ आया, और वो प्राचीन दिनों वाले के पास आया, और वे उसे उसके सामने ले आए, और उसे अधिकार, महिमा और एक राज्य दिया गया कि सब लोग, जातियां और भाषाएं उसकी सेवा करें। उसका अधिकार सदा रहने वाला अधिकार है जो कभी समाप्त नहीं होगा, और उसका राज्य ऐसा है जो नष्ट नहीं किया जाएगा। दानियल 7:13-14।
जब ये हेजकेल की दो छड़ियां आपस में जोड़ी जाती हैं, तब उन पर एक ही राजा होता है,
और मेरा दास दाऊद उन पर राजा होगा, और उन सब का एक ही चरवाहा होगा। वे मेरी विधियों पर चलेंगे और मेरे नियमों को मानेंगे और उन्हें पूरा करेंगे, और वे उस देश में बसेंगे जो मैंने अपने दास याकूब को दिया है, जहां तुम्हारे पितर बसे थे वे वहां बसेंगे, वे, उनके पुत्र और उनके पुत्रों के पुत्र सर्वदा, और मेरा दास दाऊद सदा उनका प्रधान रहेगा। यहेजकेल 37:3-5।
सभी भविष्यद्वक्ता के दूसरे से सहमत हैं, और राजा दाऊद वही मसीह है जो 22 अक्टूबर 1844 को पिता के सम्मुख आया और उसे ऐसा राज्य प्राप्त हुआ जो इसराइल उत्तरी राज्य और यहूदा दक्षिणी राज्य की दो लाठियों से इकट्ठा किया गया था। दोनों राज्यों का बिखराव 1790 से 1844 तक के 46 वर्षों के दौरान समाप्त हो गया, जब मसीह ने उस मंदिर को फिर से खड़ा किया जो उजाड़ा गया था और पैरों तले रौंदा गया था। जब उसने मंदिर को उठाया, तब वो वाचा के दूत के रूप में अपने मंदिर में अचानक आ गया, मलाकी अध्याय 3 की पूर्ति में। उस तथ्य से यहेजकेल भी सहमत है, क्योंकि सभी भविष्यद्वक्ता एक दूसरे से सहमत है।
और मेरा दास दाऊद उनके ऊपर राजा होगा, और उन सब का एक ही चरवाहा होगा। वे मेरे न्यायों के अनुसार चलेंगे, मेरी विधियों को मानेंगे और उनका पालन करेंगे, और वे उस देश में बसेंगे जो मैंने अपने दास याकूब को दिया है, जिसमें तुम्हारे पितरों ने निवास किया था। वे वही बसेंगे, वे, उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे सदा तक, और मेरा दास दाऊद सदा के लिए उनका राजकुमार होगा। फिर मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, वो उनके साथ एक अनंत वाचा होगी, और मैं उन्हें स्थिर करूंगा और बढ़ाऊंगा, और अपना पवित्र स्थान उनके बीच सदैव के लिए स्थापित करूंगा। मेरा मंडप भी उनके साथ रहेगा, हाँ, मैं उनका परमेश्वर रहूंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। यहेजकेल 37:24-27।
मंदिर का निर्माण मसीह करता है।
और उससे कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देख, वो पुरुष जिसका नाम अंकुर है, वो अपने स्थान से अंकुरित होगा, और वो यहोवा का मंदिर बनाएगा। वही यहोवा का मंदिर बनाएगा, और वो महिमा धारण करेगा, और अपने सिंहासन पर बैठकर राज्य करेगा, और वो अपने सिंहासन पर याजक भी होगा, और उन दोनों के बीच मेल का परामर्श होगा, और वे मुकुट हेलेम, तोबिया, यदाया और सपन्या के पुत्र हेन के स्मारक के रूप में यहोवा के मंदिर में रखे जाएंगे, और जो दूर दूर के हैं वे आकर यहोवा के मंदिर का निर्माण करेंगे, और तब तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और ये तब होगा यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की वाणी को ध्यानपूर्वक मानोगे। जकरिया 6:15।
मसीह अंकुर है, और उन्होंने कहा कि यदि वे अपने मंदिर को नष्ट कर दें, तो वो उसे 3 दिनों में उठा देगा, जिस पर यहूदियों ने कहा कि मंदिर बनाने में 46 वर्ष लगे थे।
तब यहूदियों ने उत्तर देकर उससे कहा, जब तू ये काम करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उत्तर दिया और उनसे कहा, इस मंदिर को गिरा दो और मैं उसे 3 दिनों में खड़ा कर दूंगा। तब यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे हैं
और क्या तू इसे 3 दिनों में खड़ा कर देगा? यूहन्ना 2:18-30।
उस अंश में मसीहा अपने शरीर के विषय में बोल रहे थे, परंतु सभी भविष्यद्वक्ता जिन दिनों में वे रहते थे उनकी अपेक्षा अंतिम दिनों के विषय में अधिक बोलते हैं। तीसरे दिन मसीह का पुनरुत्थान, आधी रात की पुकार के समय पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के दौरान मृत हड्डियों के जी उठने का प्रतीक था। एलिया की गवाही में जिस वर्षा का उल्लेख है वो बाल और अश्तोरेत के भविष्यद्वक्ताओं से उसके मुकाबले के चरम पर प्रकट हुई। तब ये सिद्ध हो गया कि एलिया का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और ये भी कि एलिया सच्चा भविष्यद्वक्ता है। पहली निराशा आते ही ये प्रकट हुआ कि प्रोटेस्टेंट झूठे नबी बन गए थे, ठीक वैसे ही जैसे बाल और अश्तोरेत के नबी। तब प्रतीक्षा का समय आरंभ हुआ और उससे मध्यरात्रि की पुकार का संदेश आया, जिसके परिणाम स्वरूप मसीह अपने मंदिर में अचानक आ गए। मध्यरात्रि की पुकार को यहेज़केल के उस संदेश द्वारा दर्शाया गया है जो हड्डियों को उठाकर एक शक्तिशाली सेना के रूप में खड़ा करता है और उस अवधि 46 वर्ष के दौरान 2 छड़ियों को मिलाकर एक राजा सहित एक ही राष्ट्र बनाया जाना था।
यहोवा का वचन फिर मुझ पर आया ये कहते हुए, हे मनुष्य का पुत्र, एक लकड़ी ले और उस पर ये लिख, यहूदा के लिए और उसके साथी इसराइल के पुत्रों के लिए। फिर एक और लकड़ी ले और उस पर ये लिख, यूसुफ के लिए, एप्रायम की लकड़ी और उसके साथियों अर्थात सारे इसराइल के घराने के लिए, और उन्हें एक दूसरे से जोड़कर एक ही लकड़ी बनाकर दे और वे तेरे हाथ में एक हो जाएंगे। और जब तेरे लोगों के पुत्र तुझसे कहें, क्या तू हमें नहीं बताएगा कि इनसे तेरा क्या आशय है, तो उनसे कहना, प्रभु यहोवा यों कहता है, देख मैं यूसुफ की लकड़ी जो एप्रायम के हाथ में है और इसराइल की गोत्रों को जो उसके साथी हैं ले लूंगा और उन्हें उसके साथ अर्थात यहूदा की लकड़ी के साथ जोड़ दूंगा और उन्हें एक लकड़ी बना दूंगा और वे मेरे हाथ में एक होंगे। और जिन लकड़ियों पर तू लिखेगा वे उनके देखते देखते तेरे हाथ में होंगी। और उनसे कहना, प्रभु यहोवा यों कहता है, देख मैं इसराइल के पुत्रों को उन जातियों के बीच से जहां वे गए हैं निकाल लूंगा और उन्हें चारों ओर से इकट्ठा करूंगा और उन्हें उनके अपने देश में ले आऊंगा। और मैं उस देश में इसराइल के पहाड़ों पर उन्हें एक ही राष्ट्र बना दूंगा और उन सब पर एक ही राजा राज्य करेगा और वे फिर कभी 2 राष्ट्र न रहेंगे और न ही वे फिर कभी 2 राज्यों में बांटे जाएंगे। वे न तो फिर अपनी मूर्तियों से, न अपनी घृणित वस्तुओं से, न अपनी किसी भी अपराध से अपने आप को अशुद्ध करेंगे, परंतु मैं उन्हें उनके सब निवास स्थानों में से जहां उन्होंने पाप किया है बचाकर निकालूंगा और उन्हें शुद्ध कर दूंगा। तब वे मेरे लोग होंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। यहेज़केल 37:15-15-23।
विधवा जो 2 लकड़ियां मध्य रात्रि की पुकार के समय एलिया की वर्षा से पहले बटोर रही थी वे इसराइल के उत्तरी और दक्षिणी राज्य थे जो तितर बितर कर दिए गए थे और जिन्हें 22 अक्टूबर 1844 को जब प्रतिरूपात्मक प्रायश्चित दिवस आरंभ हुआ एक राष्ट्र में इकट्ठा किया जाना था, क्योंकि प्रतिज्ञा ये थी कि उस समय परमेश्वर उन्हें शुद्ध करेगा। ये शुद्धिकरण जो अन्वेषणात्मक न्याय का प्रतिनिधित्व करता है उसी समय आरंभ हुआ। 2 लकड़ियों के उस एकत्रीकरण को सही ढंग से समझना आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर किसी बात के अंत को हमेशा उसके आरंभ से दर्शाता है। 105 में इसराइल के 2 राज्यों का अंत हो गया क्योंकि तब वे एक राज्य आध्यात्मिक इसराइल बन गए थे और उस समय से वे केवल एक ही राष्ट्र रहने वाले थे। उस इतिहास का चित्रण आरंभिक इतिहास द्वारा किया गया था जब वे 2 राष्ट्र बन गए थे, जो यारोबाम के विद्रोह का इतिहास है। यारोबाम की नकली उपासना प्रणाली का इतिहास उसके राज्य के अंत में भी दर्शाया जाना चाहिए। प्राचीन इसराइल की शुरुआत में हारून का विद्रोह और उत्तरी राज्य की शुरुआत में यारोबाम का विद्रोह 8:63 के विद्रोह का प्रतिनिधित्व करते हैं और 8:63 को तभी स्पष्ट रूप से समझा जाता है जब यारोबाम के राज्य के अंत को, जिसे 2 डंडों के मिलाए जाने द्वारा दर्शाया गया है, 8:63 के ऊपर भी रखा जाता है, तब ये स्पष्ट दिखाई देता है कि 8 से 63 को ऐसी पीढ़ी के रूप में दर्शाया गया है जिसने ईर्ष्या की मूर्ति स्थापित की।
हम इस अध्ययन को अगले लेख में जारी रखेंगे।
परंतु सूखी हड्डियों की ये उपमा केवल संसार पर ही लागू नहीं होती, बल्कि उन पर भी जो महान ज्योति से आशीषित हुए हैं, क्योंकि वे भी घाटी के कंकालों के समान हैं। उनके पास मनुष्यों का रूप, देह का ढांचा है, पर उनमें आत्मिक जीवन नहीं है। परंतु ये दृष्टांत सूखी हड्डियों को केवल मनुष्यों के रूप में जोड़कर नहीं छोड़ता, क्योंकि केवल अंग प्रत्यंग और रूप रंग की समरूपता पर्याप्त नहीं है। जीवन का श्वास उन देहों में प्राण फूंके ताकि वे सीधे खड़े हों और क्रियाशील हो उठें। ये हड्डियां इसराइल के घराने और परमेश्वर की कलीसिया का प्रतिनिधित्व करती हैं, और कलीसिया की आशा पवित्र आत्मा का जीवनदायी प्रभाव है। प्रभु को उन सूखी हड्डियों में श्वास फूंकना होगा ताकि वे जीवित हों। परमेश्वर का आत्मा अपनी जीवंतकारी शक्ति सहित हर मनुष्य के भीतर होना चाहिए ताकि हर आध्यात्मिक मांसपेशी और स्नायु क्रियाशील रहें। पवित्र आत्मा के बिना, परमेश्वर की श्वास के बिना, विवेक में जड़ता आ जाती है, आध्यात्मिक जीवन खो जाता है। जो आध्यात्मिक जीवन से रहित हैं, उनमें से बहुतों के नाम कलीसिया के अभिलेखों में तो हैं, पर वे मेमने की जीवन पुस्तक में लिखे नहीं हैं। वे कलीसिया से तो जुड़े हो सकते हैं, परंतु प्रभु से संयुक्त नहीं हैं। वे कुछ निश्चित कर्तव्यों के निर्वाह में परिश्रमी भी हो सकते हैं और जीवित मनुष्य समझे जाते हैं, पर बहुत से उन्हीं में से वे हैं जिनका नाम तो है कि तू जीवित है, परंतु तू मरा हुआ है। जब तक आत्मा का सच्चा रूपांतरण परमेश्वर की ओर न हो, जब तक परमेश्वर की जीवनदायी श्वास आत्मा को आत्मिक जीवन के लिए जीवित न करे, जब तक सत्य का अंगीकार करने वाले स्वर्गजन्य सिद्धांत से प्रेरित न हो, तब तक वे उस अविनाशी बीज से उत्पन्न नहीं हैं जो सदैव जीवित रहता और स्थिर रहता है। जब तक वे मसीह की धार्मिकता को अपना एकमात्र सहारा मानकर उस पर भरोसा न करें, जब तक वे उसके चरित्र का अनुकरण न करें, उसकी आत्मा में परिश्रम न करें, तब तक वे नग्न हैं। उन पर उसकी धार्मिकता का वस्त्र नहीं है। मृतकों को अक्सर जीवित मान लिया जाता है, क्योंकि जो लोग अपने ही विचारों के अनुसार, जिसे वे उद्धार कहते हैं, उसे साधने में लगे हैं, उनमें परमेश्वर अपनी भली इच्छा के अनुसार चाहने और करने के लिए कार्य नहीं कर रहा। इस वर्ग का अच्छा उदाहरण वो सूखी हड्डियों की घाटी है जिसे यहेजकेल ने दर्शन में देखा था। रिव्यू एंड हेरल्ड 17 जनवरी 1893।